ओम शांति। तो बाबा का प्यार हमने अपने अंचल में भर लिया है, भर लिया सबने जी, हर पल में। आज उन्नति का बाबा ने बहुत एक अच्छा तरीका बताया और एक शक्तिशाली स्थिति बनाने का तरीका बताया। कौन कौन से थे? हाँ, और शक्तिशाली बनने के लिए वेरी गुड। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। आज सवेरे बाबा ने डायरेक्ट सीधा वरदान दिया, आत्मानी भव। इस प्रैक्टिस में उठते बैठते चलते फिरते रहो तो बहुत उन्नति होती रहेगी। उन्नति नहीं, बहुत उन्नति होती रहेगी। तो उन्नति के बाबा बहुत साधन बताते हैं। तो आत्मवानी स्थिति में रहने से कैसे उन्नति होगी? क्योंकि सारी जो अवनति का कारण वो तो देह अभिमानी रहा ना, सारी टेंशन चिंताएं बीमारियां संबंधों में कड़वाहट सब बॉडी कॉन्शियस के कारण हुई। विकारों की जंक से आत्मा पतित बन गई, मैली हो गई, आयरनेज्ड बन गई। तो बाबा ने कितनी सुंदर युक्ति बताई, आत्म अभिमानी भव। तो आत्म अभिमानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे बनेंगे? खाली याद करने से तो नहीं होंगे। हाँ, पहली बात वर्णन सुनना सुनाना तो ठीक है, उस पर थोड़ा मनन चिंतन और महसूसता उसकी करनी है। जैसे शरीर की महसूसता नेचुरल होती है, ऐसे आत्मा की महसूसता भी नेचुरल अभ्यास हो जाए, और वो बिना प्रैक्टिस के नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते संबंध संपर्क में आते, अपने आप को पहले आत्मा देखते रहना। दूसरों को डायरेक्ट आत्मा देखना भारी पड़ता है। जब हम अपने आप से प्रैक्टिस को पक्का कर लेते हैं तो वो प्रैक्टिस दूसरों के साथ भी आसान से उसका अनुभव हो सकता है आसानी से, क्योंकि सारा जो ज्ञान है ये स्वयं को पढ़ाने के लिए है। दूसरों को पढ़ाना बहुत आसान होता है, स्वयं परिवर्तन करना सारा। तो आज हम जो चर्चा करेंगे अमृत वेला विषय के ऊपर, कि कैसे हमारा अमृत वेला बहुत सुखद हो, अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, उसमें क्या बाधाएं आती हैं, उन्हें एक रस आना चाहिए उस चीज़ का। जैसे हम पिकनिक करते हैं तो कितना मज़ा आता है ना, सारा दिन उसी का चिंतन चलता रहेगा। अगर कहीं घूमने जाना हो तो सारा दिन चलते फिरते भी संबंध संपर्क में आते भी वही चिंतन चलता रहता है। तो ऐसे ही अमृत वेला करने के लिए भी हमारे विचार उसी तरफ प्रवाहित होते रहें, वो जैसे अंदर में एक रस बनता रहे। जैसे इमली का नाम लेते क्या होता है, नाम लिया है पानी आ भी जाता है। तो ऐसे ही अमृत वेले का नाम लेते पानी आना चाहिए, है ना? लेकिन पानी आता है, भारी पड़ जाता है, सवेरे उठना पड़ेगा, है ना, भारी काम लगता है। तो उसके कुछ विधियां हैं, क्योंकि किसी भी काम को डायरेक्ट करेंगे तो इतनी सक्सेस नहीं होती है, विधि पूर्वक करना पड़ता है, विधि से सिद्धि, इसलिए बाबा कहते हैं। तो उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, बिना प्लानिंग प्लान्स जो हैं सारे असफल हो जाते हैं। तो हमको प्लानिंग बनानी पड़ेगी, थोड़ा अटेंशन रखनी पड़ेगी। जैसे आज बाबा ने कहा बुद्धि रूपी पांव जो है मर्यादाओं की लकीर के अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का पता होना चाहिए। जब तक हमको उन मर्यादाओं का पता नहीं है तो उस रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता है, चाहे वो स्थूल मर्यादाएं हैं, सूक्ष्म मर्यादाएं हैं। हर मर्यादा का पता होना जरूरी है। बाद में हम ये नहीं कह सकते हमको इस नियम का पता ही नहीं है। जैसे कोई ट्रैफिक कंट्रोल का नियमों का उल्लंघन करता है तो सीधा चालान काट देते ना, सामने वाला ये थोड़ा नहीं कह सकता मुझे पता नहीं था, पुलिस मानेगी? नहीं मानती है वो। तो उसी तरह से बाबा ने हर बच्चे को, हर ब्राह्मण बच्चे को ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं से हम सबको जानकारी दी है। ब्राह्मण जन्म होते ही सेंटर में सबसे पहले क्या बताते हैं, कोर्स के बाद ब्राह्मण जीवन के मर्यादाओं का सेंटर के साथ पास में एक बार में एक बोर्ड लगा होता है, कौन कौन सी ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं हैं। फिर कुछ मर्यादाएं होती हैं जो हमको मुरलियों से प्राप्त होती हैं, धारणाएं ऐसी होती हैं जो धीरे धीरे अपने आप पता पड़ती जाती हैं, और उन धारणाओं की बदौलत धीरे धीरे आत्मा में ताकत बढ़ती जाती है और हमें अपने जीवन का स्पष्टीकरण होने लगता है कि कैसे हमको इस मार्ग पर चलना है। फिर मुश्किल नहीं होता है क्योंकि रास्ता पता पड़ गया हमको। तो ऐसे हम अमृत वेला जो करते हैं तो उसका सारे दिन के साथ उसका कनेक्शन है। अगर हम सोचें कि सारे दिन हम अटेंशन रखें ही ना और सीधा अमृत वेला ही करें खाली, तो वो भी सक्सेस नहीं होगा। हमने दिन भर में क्या क्या सोचा हुआ है, क्या क्या देखा हुआ है, किसके संबंध संपर्क में आए हुए हैं, क्या क्या कर्म किया हुआ है, क्या क्या बोला हुआ है, कहाँ हमारी दृष्टि गई थी, वो सारी रिकॉर्डिंग दिन प्रतिदिन हमारे अंदर में वो जमा होती रहती है, हर पल की, हर सेकंड की। और एक तो वो जो रिकॉर्डिंग की होती है, या तो वो रात को सोते समय होती है, स्वप्न के रूप में आएगी, या फिर जब हम योग में बैठते हैं, चाहे शाम किस में बैठें या सवेरे बैठें, वो रिकॉर्डिंग सबसे पहले वही घूमेगी। इसलिए अमृत वेले से रात्रि तक जो भी हमारी दिनचर्या है, उस दिनचर्या अनुसार जो नियम बने हुए हैं, जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, उन नियमों के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते रहें तो फिर अमृत वेला बहुत सुखद होगा, मुश्किल नहीं है। बाबा ने कहा ना, जो मर्यादाओं, जिनका बुद्धि रूपी पांव जो मर्यादाओं के अंदर है, तो वो कैसे होते हैं? लव लव लवली, लवली और लक्की और लवली, है ना। हाँ, बाबा ने कहा अगर जीवन में तूफान आते हैं, परेशानी है, उदास होते हैं, विघ्न आते हैं, तो उसका कारण है मर्यादाओं का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। माने देखो, सीधी गारंटी है भगवान की, अगर हम मर्यादाओं पर चलते हैं तो ना विघ्न आएंगे, ना तूफान आएंगे, ना परेशानी होगी, ना उदासी आएगी। अगर आएगी, फिर भी आती है अगर, तो वो चली जाएगी। जैसे संडे की मुरली में कल बताया था ना बाबा ने, कर्मबंधन आते हैं, चले जाते हैं, तो उसको विघ्न नहीं कहेंगे, वो तो आए और चले गए, हमको स्पर्श नहीं करवाए वो। तो इसी तरह से मर्यादाओं का अगर हम अपने जीवन में पूरा अटेंशन रख के उन पर चलते हैं, तो हमारे लिए एक उन्नति का साधन बन जाती है। उससे हमारी स्थिति शक्तिशाली हो जाती है, सर्व प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है, क्योंकि हमने आज्ञा का पालन किया है। कोई भी टीचर है, अपने स्टूडेंट को लायक बनाता है, उस टीचर की जो मेहनत है, अगर वो स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास होता है तो वो पूरे स्कूल का नाम रोशन हो जाता है, और उस बच्चे पर भी सबकी नज़र रहती है, दुआएं मिलती हैं सबकी उसको। उसी तरह अगर हम ब्राह्मण जीवन में मर्यादाओं पर पूरा खरा उतरते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं, तो दुआएं स्वतः मिलती हैं सबकी, चलते फिरते एग्जाम्पल बन जाते हैं। कल था ना मुरली में, एग्जाम्पल बन जाते हैं। कौन कौन से बच्चे एग्जाम्पल बनते हैं? हाँ जी, हाँ, जो मनन कर मगन रहते हैं, तो वो एक तो स्वयं के विघ्नों को भी विघ्न विनाशक बन जाते हैं, निर्विघ्न रहते हैं, और दूसरों के विघ्नों को विनाश कर देते हैं और एग्जाम्पल बन जाते हैं, है ना। इसलिए कईयों को देखने से ही हल्का हल्का अनुभव होता है, और कईयों को देखने से भारी भारी अनुभव होता है ना। तो वो हमारे पर डिपेंड करता है कि अगर हम हल्के रहते हैं तो दूसरों को भी ऐसा अनुभव होगा। अगर हम खुद ही बोझ लेकर चल रहे हैं, भारी है, टेंशन है, कई प्रकार के संकल्पों का बोझ आत्मा उसमें छटपटा रही है अंदर से, तो दूसरे को भी वैसा अनुभव होगा। तो अमृत वेला तो सभी करते हैं, है ना, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं सभी। तो अमृत वेले क्या क्या करना होता है, पहले आप बताओ कैसे करते हैं अमृत वेला। सबसे पहले उठ के गुड मॉर्निंग, किसको, कौन से बाबा को, शिव बाबा को, गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी। उस गुड मॉर्निंग में जो उमंग उत्साह होगा, वो रात को हम जिस अवस्था में सोए उसी अनुसार होगा। रात को अगर हम थोड़ा सा पढ़ के भी सोए ना, तो उठते वही चीज़ याद आएगी, फिर गुड मॉर्निंग करने के बाद तुरंत वही संकल्प चालू हो जाएंगे, दूसरी बात नहीं याद आएगी। हाँ बिल्कुल, वो आने लगते हैं, हमने भी महसूस अनुभव करके देखा हुआ है। रात को जो हम याद करके सोते हैं, सवेरे उठते वो याद आता है जहाँ हमने छोड़ा हुआ है। तो गुड मॉर्निंग बाबा, फिर उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा उठेंगे कितने बजे? वैसे तो बाबा ने अमृत वेले उठने के बहुत सारे टाइम बताए हुए हैं, एडजस्टमेंट है, एडजस्टेबल है बाबा भी। तो कितने बजे उठेंगे? 3:45। हाँ, क्योंकि जो भाई बहने पहले उठते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो पहले उठते हैं जरूर उनका जो चिंतन है ना बहुत ऊंचा होगा, तभी पहले उठ के लंबे समय तक वो अमृत वेला कर सकते हैं। खाली अगर बिना चिंतन के उठ के बैठते हैं, मनन शक्ति नहीं है, तो फिर वो भारी पड़ता है। लेकिन फिर भी उनसे सीखने की है, अगर इतना अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो सीखने को ये मिलता है कि दृढ़ता कितनी उनमें उठ के आ रहे हैं, बाबा से प्यार कितना है। तो सबसे पहले तो हमको टाइम निर्धारित कर देना, एक तो जो नॉर्मल ऑफिशियल रूप से 3:30 का बना वो तो लास्ट हमारा टाइम है, लेकिन उसके पहले 3-3:15 बजे, उससे पहले उठो तो। लेकिन ये है कि पहले हमको ये देखना है कि हमको नींद नहीं आनी चाहिए, टाइम कॉन्शियस नहीं बनना है हमको। जैसे बाबा कहते हैं 8 घंटे योग करना ही है, तो योग तो करना है 8 घंटे, लेकिन 8 घंटा योग होना चाहिए, ऐसा नहीं बीच बीच में वियोग भी होता रहे, लेकिन प्रैक्टिस 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 करते हो जाएगा। तो वो भी एक विघ्न तो आते हैं, जिसने दृढ़ता रखी है कि मुझे अमृत वेले जल्दी उठना है तो सक्सेस तो होगा ही होगा वो, क्योंकि बाबा की नज़र तो उन बच्चों पर है ही है। लेकिन अपने को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पीछे जाना, डायरेक्ट हमला नहीं करना, नहीं तो डायरेक्ट हमला करके गिर भी सकते हैं। तो अगर 3:30 बजे उठते हैं तो थोड़ा पहले 5-10 मिनट पहले करते हैं, 3:15 बजे कर दें, है ना, फिर वो सक्सेस हो जाते हैं। हम सप्ताह और में 10 दिन में 1 महीना में फिर 3 बजे कर दें। तो ऐसे धीरे धीरे पीछे जाना है, डायरेक्ट नहीं जाने का, क्योंकि अगर बॉडी को आराम नहीं देंगे, गाड़ी भी ठीक नहीं है, तो ड्राइवर भी क्या करेगा उसमें, है ना। तो सबसे पहली बात है हमारा उठने का टाइम निश्चित होना चाहिए। और हमने देखा है अगर कहीं ना कहीं उठने में थोड़ा आगे पीछे होता है ना, तो बाबा उठा देता टाइम से, अचानक आँख खोल जाएगी, है ना, वो आसपास में देख तो कोई है ही नहीं है, लेकिन लगता है कोई तो था इधर, तो पता चलता बाबा उठा के गया, क्योंकि हमने अटेंशन रखा हुआ है। तो सबसे पहली बात है पहले तो उठने का टाइम निश्चित करना है, फिर अमृत वेला बहन करना है, खटिया पर नहीं करने का अमृत वेला, क्योंकि घरों में अगर जगह कम होती है तो खटिया पर अधिकतर लोग कर लेते हैं, लेकिन खटिया पर नीचे बैठ के करने का। और मधुबन में आए तो यहाँ तो बेहद का है, यहाँ तो अगर कमरे में रहे तो बहुत सारा बड़ा बोझ पड़ जाएगा, अगर यहाँ रहकर भी हम बाबा के कमरे में नहीं पहुँच पाए, सब ठीक ठाक, तबीयत खराब है, एक बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है अलग बात है, लेकिन हमने देखा अगर तबीयत खराब है और हम उठकर बाबा के कमरे में आ जाते हैं तो तबीयत सारी ठीक हो जाती है, बहुत बार अनुभव किया हुआ, बहुत बार, एक बार बहुत सारा बुखार हो गया था मैंने बहुत ज़्यादा, अब सवेरे सवेरे डिस्पेंसरी तो खुली नहीं होगी, क्या करें, तो आँख खुल गई अच्छी तरह से, बुखार तो था, अब सोने को मन ही नहीं करे, नींद भी कहाँ आएगी बुखार में, तो हम उठ के आ गए, तो हम जैसे मेडिटेशन हॉल में बैठे तो सारा बुखार ही खत्म हो गया, उतर गया सारा एकदम। कई भाई बहनों को ऐसा अनुभव है, ज्ञान विज्ञान में रहते हैं तो बहुत तबीयत खराब, लेकिन उठ के धीरे 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 यहाँ पहुँचे और जाते समय बिल्कुल ठीक हो गए, क्योंकि हम उठ के किसके प्यार के कारण उठ रहे हैं, भगवान के प्यार के कारण, तो उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो जरूर उसकी हमारे पर नज़र तो रहेगी ना, वो हमारा मात पिता है तो वो हमारे ऊपर पूरी नज़र रखा है। तो पहला है एक तो टाइम निश्चित, दूसरा स्थान निश्चित करना है, जो स्थान निश्चित है हमको वहीं आकर संगठन में योग करना चाहिए। हमने देखा है बड़े दादी जी हिस्ट्री हॉल में सामने बैठते थे योग में, आके सामने बीच के सोफे में एकदम बिल्कुल 3:30 बजे वहाँ पहुँच जाते थे, और फिर बाद में यहाँ बैठ के दादी दृष्टि भी देते थे सबको, बहुत बार ऐसे जो भी इधर उधर भाई बहन बैठे तो वो भी यहाँ दृष्टि लेने आ जाते थे, दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, जान की दादी जी, कितनी एज थी, और अमृत वेले मेडिटेशन हॉल पहुँच जाते थे योग कराने के लिए, एकदम पूरा शक्ति स्वरूप 4 से 5:30 बजे तक पूरा, जैसे लगता था पूरा परमधाम जैसे नीचे उतर आया, इतनी पावरफुल दृष्टि। तो इतने सालों से उनकी साधना चल रही है और अमृत वेले से कितना प्यार है उन आत्माओं को भी, रत्नमोहन दादी जी को देखते थे हम, सवेरे भी शाम को भी योग में आते थे वो। तो हम सबके सामने एग्जाम्पल हैं ये। तो योग हमको कभी मिस नहीं करना है किसी भी कीमत पर, ना हमको मिस करना, ना किसी को मिस करने के लिए प्रेरित करने का, ना हमको योग के टाइम में किसी को डिस्टर्ब करने का। अगर हमको बहुत जरूरी काम है, अलग बात है, किसी से काम पड़ा है और वो योग में बैठे हैं, और वो काम बाद में भी हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पाई पैसे का काम है। लेकिन जो व्यक्ति योग में बैठे हुए हैं, विश्व को साकाश दे रहे हैं, भगवान से जुड़ी हैं उनकी तारें, और उसकी तार को हम तोड़ देते हैं, कितना बड़ा बोझ हो जाएगा, पाप हो जाएगा। कि पूरे इतने जन्म हम भगवान को पाने के लिए इतने भक्ति पाठ पूजा किया, भटके तड़फे, अब जाके बड़ी मुश्किल से कनेक्शन जुड़ा है और फिर हम उसको तोड़ रहे हैं, कितना पाप का बोझ चढ़ जाएगा। तो हमको योग संगठन में आके करना है, और ना हमको ऐसा करना है कि दूसरे के लिए हम बाधक बन जाएं, दूसरे के लिए प्रेरित बने, तो अच्छा योग करना है। दूसरा, योग में हम जब बैठते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि नींद आती है, नींद आ भी सकती है, बड़ी बात नहीं है इसमें, आ भी जाए तो टेंशन नहीं लेने की, तो लेकिन उठ जाने का वहां से, चलते फिरते योग करो, चलते फिरते प्रैक्टिस करो, मैं फरिश्ता हूँ, बाबा की छत्रछाया मेरे ऊपर है, ये सब योग के बिंदु हैं। माना बॉडी कॉन्शियस एक है, देह का चिंतन एक है, आत्मा का चिंतन, परमात्मा का चिंतन, आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन में रहेंगे तो हमारा वो भी योग ही है। ऐसा नहीं वहीं बैठे हैं और जुटके खा रहे हैं, आसपास से भले वाले कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन ध्यान तो जाता है ना, जो आंखें खोल के आजू बाजू बैठे हुए हैं। तो हमको देखना है कि जितना समय हम बैठे पूरा अलर्ट एक्यूरेट बैठना है। और तीसरी बात है, जितना समय हमको बैठना है तो उतना समय हमको करना क्या है वो क्लियर पता होना चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, अपने आप से स्पष्ट होना चाहिए, असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि ठीक है मैं अमृत वेले करने जा रहा हूं, बस पूरा हुआ करके आगे पूरा, ऐसा नहीं। करना क्या है पहले से पता होना चाहिए उसका, तो वो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। वो हमने टाइम फिक्स कर दिया कि इतना समय इस काम को करना है, तो वो उसी मन बुद्धि उसी अनुसार चलेगा। अगर हमने टाइम नहीं दिया, अपने मन बुद्धि को टाइम टेबल बनाया ही नहीं है, पहले से उसको संकल्प दिए नहीं है, तो मन बुद्धि भारी हो जाएगा। जैसे यहाँ से हम अगर आबू रोड जाते हैं तो बिना सोचे समझे थोड़ा उठ के चल पड़ते हैं, कहीं भी रास्ते में घुस जाएंगे, ऐसे थोड़े जाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे ना। तो अमृत वेले हम जा रहे हैं, क्या करना, मन बुद्धि को कहाँ कहाँ लेके जाना है, कहाँ उसको यात्रा करानी है, कहाँ की सैर करानी है, मन बुद्धि के साथ किसके साथ उसको रूरवान करनी है, ये सब पहले से क्लियर होना चाहिए, तो उसका सुख आएगा। तो क्या करेंगे अमृत वेले, मान लीजिए हम एक घंटा योग करते हैं तो एक घंटे की प्लानिंग होनी चाहिए, भले हर 5 मिनट की बना लो। जैसे हम अपना बताते हैं हर 5 मिनट की है, 5 या 7, 2 मिनट ऊपर नीचे हो जाए वो भी कोई बात नहीं, उसकी 5 मिनट ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं करने का। हाँ, कई बार एक ही कर्तव्य में एक घंटा बीत जाता है तो वो भी ठीक है। तो उसमें हम 12 काम करते हैं डेली, या कभी कभी 4 भी होते हैं, लेकिन मन बुद्धि एकाग्र होना चाहिए 12 काम सकाश देने के लिए। और उससे पहले क्या करते हैं, जैसे बाबा ने कहा वरदान लो, जैसे आज बाबा ने कहा आत्मवाणी बाबा है ना, तो हम सवेरे सवेरे बाबा के कमरे में या कहीं भी है, या उठते ही जहाँ से हम कमरे में उठते वहीं, या वहाँ से आते इसमें, तो ऐसे महसूस करते हैं, अब आंगन में खड़े होके जैसे बाबा के सामने फोटो लगा हुआ है तो महसूस करते हैं जैसे ये सूक्ष्म पत्नी बन गया हुआ है ना, और बाबा वरदान दे रहे हैं, है ना। अमृत वेले किताब में बहुत सारी अमृत वेले की विधियाँ हैं, बाबा ने कहा रोज अपने को तिलक दो, है ना। तो ये तिलक हो या वरदान को डेली ये महसूस, क्योंकि ये हमारे आत्मा की खुराक है, ये भगवान के दिए हुए सोमान, भगवान के दिए हुए महावाक्य संकल्प, वो हमारे लिए खुराक है आत्मा के लिए। अगर हम खुराक खिलाएंगे नहीं तो यात्रा करेंगे कैसे, जिसको जान ही नहीं है तो चलेगा कैसे, वो शक्ति चाहिए ना चलने के लिए भी, स्टेमिना चाहिए, लंबी यात्रा करनी है तो स्टेमिना भी उतना चाहिए, अगर लंबा हमको योग करना है पावरफुल योग करना तो स्टेमिना भी उतना चाहिए, बिना स्टेमिना के बैठेंगे तो योग भी कैसे करेंगे। तो बाबा से वरदान लेना है, जैसे बाबा पहले ही वरदान दे रहे हैं, हाथ रख के सिर्फ सदा भी जाइए मस्तक पर तिल, महसूस करना कि जैसे बाबा सचमुच यहाँ हाथ लगा रहे हैं, यहाँ हाथ लगा रहे हैं कि सदा भी जाइए बाबा, सदा सफलता मूर्त बाबा, है ना। ऐसे वरदान लेने, अपनी एक लिस्ट बनानी, फिक्स कर देनी, सदा मास्टर सब शक्तिवान भव, मास्टर ज्ञान सूर्य भव, और फिर उस पर थोड़ा थोड़ा रुक भी जाना है। कई बार तो दो चार ही वरदान में टाइम बहुत हो जाता है, क्योंकि वहां उसका थोड़ा फिर लंबे समय तक तो पहले चिंतन ही नहीं चलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे चिंतन चलता है। स्वराज्य अधिकारी भव, तो सारा एक चित्र भी साथ में तैयार हो जाता है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात मैं सारे कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, मालिक हूँ, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, मैं दास नहीं हूँ, इन कर्मेंद्रियों का अधिकारी हूँ। ये छोटी छोटी आंखें जैसे एक मुरली में है ना, ये छोटी छोटी जो कर्मेंद्रियाँ क्या है, आंखों को बाबा चूहे की संज्ञा दी, कानों को बाबा ने बिल्ली की संज्ञा दी, ये छोटे छोटे कर्मेंद्रियों के बस हो जाते हैं, कभी चूहा आया, कभी बिल्ली आए, कभी कुत्ता आया, कभी शेर आया, नहीं हम इनके मालिक हैं, स्वराज्य अधिकारी बाबा, है ना, बाप सोन विश्व कल्याणकारी बाबा, लाइट ऑस माइट ऑस बाबा, दानी बरदान दानी महादानी बरदानी बाबा, त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त सेवाधारी बाबा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाबा। तो ऐसे वरदान पहले से अपनी एक सूची तैयार कर रखनी है, अपनी प्लानिंग बनानी है, तो फिर मजा आएगा उसके। और देखना है जो हमने प्लानिंग बनाई है, जो चार्ट बनाया, उसके अनुसार हमारा ये हुआ, तो अपने आप ताकत आएगी। बाद में कोई नींद वींद का संकल्प ही नहीं आएगा, नहीं तो बिना प्लानिंग अगर बैठे तो क्या होता, फिर बाद में 4:45 बजे तो लगता है अभी आधा घंटा जाके सो ही लूं। पहले शुरू शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो इतना तो पता नहीं, सेंटरों में तो बिना प्लानिंग ही योग करते हैं, तो हम बाबा के कमरे में बैठे तो हमको झुटका आ गया, तो पीछे से भाई ने हमको ऐसे ऐसे किया, और उसके बाद हमको इतना करंट लगा, उसके बाद नींद नहीं आई कभी, क्योंकि बिना प्लानिंग बैठे थे, तो बिना प्लानिंग अगर हम बैठते तो नींद आई आई कन्फर्म है। वो अगर फिर भी आती है तो बताया कि चलते फिरते करो। तो पहले बाबा से वरदान लेने हैं, 21 वरदानों की लिस्ट बना लो या 31 की बना लो, अपने ऊपर है, अनुभव करना, महसूस करने दे कि सचमुच वो मैं हूँ। जैसे कल बताया था ना क्लास में, डबल लाइट ताजदारी बाबा, तो क्या था वो, उसकी महसूसता करनी है कि सिर के ऊपर बाबा ने ताज रख दिया, पवित्रता का ताज रख दिया, महसूस करना है उसकी लाइट मेरे सारे शरीर में भी समा रही है, सारे कर्मेंद्रियां शुद्ध शांत पवित्र हो रही है, वो महसूस करना उसके साथ में पूरी लाइट, जैसे बाबा की लाइट का गोला, सारा वो गोला गोले ने सुरक्षा चक्र मेरे शरीर में बनाया हुआ है, उस सुरक्षा चक्र के अंदर मैं सुरक्षित हूँ, एकदम पूरा करंट जैसे फ्लो रहा है, एकदम जैसे परम धाम की मौन, जो मौन का जो संसार है वो, उसकी प्रचंड ऊर्जा मेरे अंदर समाती जा रही है, और सारी कर्मेंद्रियों में जैसे करंट आता है, करंट का फ्लो हो रहा है निरंतर, जैसे दूसरा करंट अगर थोड़ा सा लगे तो कैसे आदमी हिल जाता है, नींद उड़ जाएगी, तो ऐसे नींद उड़नी चाहिए उसकी, वो वरदानों को स्मृति में लाते लाते ही नींद उड़ जाएगी, तो वो हमको देखना है। तो ये वरदानों को हमको स्मृति में रखना है। फिर उसके बाद योग में बैठते हमको क्या करना है, काम करने है ना, तो जैसे मैं बताया सबसे पहले 5 मिनट स्वयं को चार्ज कर लेना, बस एक ही संकल्प में कि मैं आत्मा भी भगवान से पूरा करंट ले रही हूँ, है ना, बाबा जैसे मेरे ऊपर आ गया है और यहाँ आके चिप गया और बाबा का सारा करंट मेरे अंदर आता जा रहा है, 5 मिनट उसी संकल्प में बैठना, दूसरा कोई संकल्प नहीं आने देना, और वो फीलिंग करनी है, उस फीलिंग में रहना है कि सचमुच वो सारा करंट अंदर में घुसता जा रहा है, और आत्मा जैसे एकदम अलग से फीलिंग हो रही है, इस बॉडी से डिटैच अनुभव हो रहा है, ये बॉडी है ही नहीं है, जैसे पूरी बॉडी में जैसे तो करंट ही करंट फ्लो हो रहा है, वो अनुभव करना, 5 मिनट एक ही संकल्प में बैठ जाना, स्वयं को फुल चार्ज कर लेना है। फिर दूसरे 5 मिनट क्या करेंगे, दूसरे 5 मिनट जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, जहां भी हम बैठे हुए हैं, सारे वातावरण में करंट फैला देना अगले 5 मिनट में। और अगले 5 मिनट में क्या करेंगे, जो भी सारे दिन में हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, सब आत्माओं को करंट देना है, ईश्वरीय शक्तियों का करंट देना उनको, ताकि वो भी निर्विघ्न रहें। हम हमारा योग केवल स्वार्थ का नहीं है, अवर्ण के लिए नहीं है, संसार के लिए है, जैसे बाबा सबके लिए, सबका बाबा ना, केवल एक का ही थोड़ा नहीं है, हम भी तो सबके है ना, पूरा संसार ही अपना है, तो सबके लिए भी योग करना है। आज संसार की हालत क्या है देख रहे हो ना, पूरा संसार पूरे मनुष्य क्या हुआ पड़ा है, करा रहा है एकदम बीमारियों से ग्रस्त। तो फिर चौथी बात है बीमार लोगों को देना है, आज तो घर घर में बीमारियों का ढेर लगा हुआ है, हर इंसान किसी न किसी बीमारी से तो ग्रसित ही है, और वर्तमान समय तो हालत संसार के देख लो क्या हालत है, और ये कम होने वाली है क्या, ये तो धीरे धीरे बाबा कितने क्या होगा इसका, संसार की परिस्थिति दिन प्रतिदिन नाजुक आने वाली है, तो 5 मिनट उन आत्माओं को भी दे देना है और उससे बहुत दुआएं मिलेंगी सूक्ष्म में। अगले 5 मिनट क्या करेंगे, भटकती हुई आत्माओं, कितनी आत्माएं शरीर संसार में भी शरीर छोड़ रही हैं, उनको कौन ठिकाना बताएगा, तो उन आत्माओं को भी शक्तिशाली करंट देना है। फिर भक्त आत्माएं हैं, अब भक्त आत्माओं को कहाँ देंगे, मंदिरों में जाना है ना, आजकल मंदिरों में भक्त नहीं मिलेंगे, आजकल तो मंदिर भी बंद है, तो कहाँ जाएंगे, घर में ही, उनके घर में जाना पड़ेगा। वो तो बहुत आगे इष्ट देव का दर्शन करने के लिए मंदिरों में बहुत आगे, अब वो मंदिर में आकर वो भी थक गए भी, अब घरों में बैठ गए, अब हमको जाना पड़ेगा उनके घरों में। तो संसार में जितने भी घर हैं सभी के घर में जाके इष्ट देव इष्ट देवी बन के उनको साकाश देना है। कल था ना परसों वरदान, कौन सी माता, काली माता। तो कोई भी माता बन के या इष्ट देवी बन के उनको वरदान देना है, शक्तियां देनी है, उनको साकाश देना है, उनके दुख करने हैं, रूरवान करनी है उनके साथ, जैसे उनको महसूस हो कि कोई तो हमारे ऊपर है, कोई तो यहाँ शत्रशाया बनकर हमारे आसपास घूम रहा है, महसूस करना कराना उनको। तो भक्त आत्माओं को साकाश देना, फिर ब्राह्मणों को साकाश देना है। बाबा कहते चैरिटी बिगिन्स एट होम, तो ये भी तो हमारा परिवार है ना, क्योंकि परिवार में ऊपर नीचे तो चलता ही है, गिरे हो को गिराना हमारा कर्तव्य नहीं है, उठाना हमारा कर्तव्य है, कोई ऊपर नीचे तो अवस्थाएं होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि सभी एकदम हम सबको हम सोचे कि सब बहुत अच्छे हो जाएं, हमारा भी तो कर्तव्य बनता ना अच्छा बनने के लिए, बनाने के लिए भी। तो सब ब्राह्मण आत्माओं को भी निर्विघ्न बनाने के लिए वो करना है, क्योंकि संसार में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं तो ऐसा नहीं है कि जो दिनचर्या है हाँ वो बाहर वाले उसको निभा पाते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, उन परिस्थितियों का सामना करना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करना, उनको सामाजिक आर्थिक सब चीज़ें उनको देखनी पड़ती हैं। तो बाबा ने हम सबको अपनी गोद में बिठा के रखा हो तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता ना, कुछ दायित्व बनता है, तो यहाँ हम बैठ कर उनको साकाश दे शक्ति दे, थोड़ा टाइम निकालें, और टाइम तो हम ब्राह्मणों के पास बहुत होता है, अगर मधुबन में टाइम नहीं तो कहीं टाइम नहीं हो, यहाँ तो 24 आवर टाइम ही टाइम है, सेवा करते हुए टाइम ही है, सेवा करते हुए फील करना है कि जैसे मुझसे वाइब्रेशन 24 आवर निकल ही रहे हैं, और वाइब्रेशन तो जाते ही हैं, वाइब्रेशन तो 24 आवर हमारे से निकलते ही रहते हैं, जो हमारे संकल्प चल रहे हैं उसके वाइब्रेशन 24 आवर चलते रहते हैं, वो चारों तरफ प्रभावित होते रहते हैं। तो ब्राह्मण आत्माओं का साकाश देना, और किसको देंगे, बहुत काम है अभी तो, हाँ जी, प्रकृति के 5 तत्वों को, है ना, प्रकृति के 5 तत्वों को भी दोस्त बनाना है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 5 तत्वों को दोस्त बनाएंगे तो शरीर तंदुरुस्त रहेगा। और किसको देंगे, हाँ जी, भटकती आत्माओं को भी दे दी, हाँ, भटकती आत्माओं को, तड़पती आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को, रोगी आत्माओं को, और किसको देंगे, हाँ जी, हाँ, अपने आप को सकाश हो, तो सबसे पहले बोला कि आत्माओं को भी सकाश, अपने शरीर को भी सकाश देनी है, है ना। और भी बहुत सारे हम निकाल सकते हैं, ऐसे लिस्ट लंबी निकाल सकते हैं, तो हाँ जी, हाँ, पशु पंछी, ये भी हमारा भूल गया, ये क्लास के आते समय हमने पहले सोचा था, तो वो कभी कभी देते कभी भूल जाते हैं, इसलिए जो डेली करते हैं वो तो याद रहता है, जो नहीं करते भूल जाता है। तो पशु पंछियों को सकाश देना है ना, क्योंकि वो भी पर्यावरण संरक्षण के एक है, उसके विशेष दायित्व तो अदा करते हैं वो, हाँ, कल्प वृक्ष, ये फिर विजन आ गया, तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के भी हम उसको सकाश दे सकते हैं, और कल्प वृक्ष को ऊपर भी रख लेना सिर के ऊपर, है ना, या सिर के ऊपर रख कर चल रहे हैं, चलते फिरते मेरे सिर पर कल्प वृक्ष है, ना, और मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ, ये जड़े हैं कल्प वृक्ष की, और ऊपर वृक्ष है, तो कल्प वृक्ष को, या फिर कल्प वृक्ष के ऊपर भी खड़े होकर सकाश दे सकते हैं। और कैसे सकाश देंगे, नए नए तरीके होने चाहिए, तो सवेरे मजा आएगा। फिर विश्व की परिक्रमा करनी है, ग्लोब पर बैठ के, ग्लोब को बैठ के, या ग्लोब फिर ग्लोब को सिर पर रख लेना, ऐसे ऐसे भी चित्र आता है ना, कई बार बड़े बड़े अच्छे चित्र आते हैं, तो ग्लोब को ऐसे, अगर कमरे में बैठे हैं अकेले तो फिर ऐसे भी हाथ कर सकते हैं, कोई बात नहीं, है ना, जैसे हमने ग्लोब पकड़ा हुआ है तो एक्टिव ही रहेंगे, है ना, तो ग्लोब को सकाश देना है। और किसको देंगे, हाँ जी, पुलिस और आर्मी को, हाँ देश के जो सुरक्षा प्रहरी हैं उनको भी देना है, तो सबको देना। फिर लास्ट में विश्व की सर्वात्माओं का कल्याण हो, उसमें फिर सारे ही आ जाते हैं, सर्वात्माओं का कल्याण। अब इसके लिए करना क्या है सारे दिन में, क्योंकि सारी चीजें तब होगी जब हमने सारे दिन में अटेंशन रखा। उसके लिए सबसे पहली बात है मुरली क्लास पर अटेंशन देना है। जो भी हमारी मॉर्निंग क्लास में मुरली होती है तो उसमें हमको कुछ महावाक्य सारे दिन में हमारे मन बुद्धि में गूंजते रहने चाहिए। जैसे आज सवेरे ये हमको दिल में लग गया था, मीठे बच्चे आत्मानी भाव, चलते फिरते उठते बैठते प्रैक्टिस करो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होती रहेगी, तो बार बार गूंजते रहने चाहिए। फिर धीरे धीरे चिंतन धीरे धीरे चलता है, तुरंत नहीं चलेगा। फिर आया विचार बुद्धि में कि आत्मवानी बनने से फायदे क्या क्या हैं, क्यों बनना आत्मवानी, और नहीं बने तो नुकसान कितने हुए। फिर धीरे धीरे उसका चिंतन चलेगा तो वो फीलिंग होने लगी, आत्मा में ताकत आएगी, शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगा, बल पैदा होगा उसमें। तो मुरली क्लास में से हमको कुछ पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, है ना, तो हम सेफ रहेंगे। सेफ कैसे रहेंगे, आज बाबा ने कहा हाँ बाप से न्यारे रहेंगे, हाँ न्यारे और बाप के प्यारे, संसार से न्यारे, हाँ देह और देह के संबंधों से न्यारे और बाप के प्यारे, वहां तो केवल न्यारे लिखा, तो सदा सेफ रहेंगे। हाँ वो ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप, पहले ज्ञान स्वरूप फिर प्रेम स्वरूप, है ना, कौन सा पैरा था वो, सात नंबर का सात नंबर, तो ज्ञान स्वरूप अवस्था चाहिए। तो ये था कि मुरली क्लास में से हमको कुछ पॉइंट कलेक्ट कर लेने डेली, जो हमारे मन बुद्धि में छप जाए, और बार बार उनको रिवाइज करते रहना, फिर वो भूलेंगे नहीं। फिर दूसरी बात, फिर जब हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं तो कर्म करते हुए पूरा कर्म कॉन्शियस नहीं हो जाना है, वहां हमको कुछ समर्थियां रखनी पड़ेंगी कि कर्म करते हम केवल निमित्त हैं, भगवान ने हमको अपना भाग्य बनाने का यह मौका दिया है, उसकी हमारे पर कृपा हुई है, उसने हमको ऐसे योग्य चुना है, हमारे में वो शक्ति भरी ताकत भरी, तभी तो हमको निमित्त बनाया, और वो कर्ण करावन हार करवा रहा है। अगर हमने तो दूसरा भी कर लेता, बड़ी बात नहीं, उसमें काम तो रुकता नहीं है, है ना। जैसे हम यज्ञ में देखते हैं कितने यज्ञ विस्तार को जाता जा रहा है, कितनी आत्मा चली गई है, यज्ञ थोड़ा रुका है, भगवान का यज्ञ है। तो ऐसा नहीं कि हम उस कर्म कॉन्शियस में ही सोचे मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, किसी के काम रुकने वाला नहीं है, ये तो भगवान ने हमको एक मौका दिया, डायमंड मौका, डायमंड गिफ्ट दी है, संडे के मूल्य में इतना काल, तो हमको गिफ्ट मिली है सेवा, तो ये इस सेवा से हमारे भाग्य का निर्माण हो रहा है, कल्प कल्प के लिए, अनेक पूरे कल्प के लिए, अनेक जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए जमा का खाता और जमा कर रहे हैं। तो कर्म करते हुए निमित्त भाव की अवस्था चाहिए, कर्ण करावन हार की अवस्था चाहिए, और उसमें स्वार्थ भाव चाहिए, निस्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव नहीं चाहिए निस्वार्थ भाव चाहिए, है ना। और फिर कर्म के बाद फिर हम जब संबंध संपर्क में आते हैं तो वहां भी बहुत खबरदारी रखने की जरूरत होती है, क्योंकि जो हमने अभी तक मुरली क्लास से लेकर जो भी हम जिस भी सेवा स्थान पर हैं या काम भी आते हैं, उससे जब हम बाहर निकलते हैं और जब हम संबंध संपर्क में आते हैं तो संबंध संपर्क में वही बातें आती हैं, वही संकल्प चलने लगते हैं जो हमने पहले से कर्म किया हुआ उसी अनुसार। अगर हमने पहले से कर्म कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस स्थिति में रह के कर्म किया हुआ है, अमृत वेले मुरली के मुरली क्लास में जो हमने पॉइंट बुद्धि में रखे थे, तो दूसरों को देखते हुए हमारे संकल्प वैसे ही चलने लगेंगे कि सामने वाले के प्रति आत्मिक दृष्टि रहेगी, कल्याणकारी दृष्टि रहेगी, उसके प्रति कल्याणकारी भावना रहेगी, शुभ भावना कामना रहेगी। नहीं तो अगर हम पहले से कमजोर बनकर संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो उसकी कमजोरी हमको प्रभावित कर देगी और व्यर्थ का समुद्र वहां अपना काम चालू कर देगा, व्यर्थ की नदियां बहने लगेंगी। और संकल्प तो व्यर्थ जैसे करेंगे तो जो अपनी जो रचना है, संकल्प तो हमारी रचना है, तो अपनी रचना बहुत प्यारी लगती है और उसकी पालना भी करनी पड़ती है। तो व्यर्थ संकल्प अगर हमने अंदर रख दिए तो शाम को योग लगेगा, अमृत ले योग लगेगा। तो सारे दिन में हमको अटेंशन रखने की जरूरत है। जब भी हम संबंध संपर्क में आते हैं, उस संबंध संपर्क में हमारे बोल, हमारी दृष्टि, हमारे संकल्प वही चलेंगे जो हमने पहले किया हुआ है। ऐसे मान लो अभी हम क्लास कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, तो सारे दिन में जो हमने सोचा हुआ ना, बोला हुआ, देखा हुआ, उस सब का प्रभाव अभी तक है, उसी अनुसार हमारी अवस्था बनती है। तो अटेंशन रखना पड़ेगा हर बार हमको अटेंशन समन संपर्क। फिर संघ की संभाल बहुत जरूरी है, इसलिए कहते हैं बाबा संघ तारे को संघ बोरे डुबोए, तो हमारा संघ बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। कहाँ कहाँ संघ, क्योंकि संघ तो आजकल डिजिटल का संघ भी बहुत होता है, अनेक प्रकार की माया है, जो जो देखा हमने, चलो समन संपर्क में नहीं भी आते हैं लेकिन ये तो हमेशा हमारे साथ रहता है, ये भी एक सबसे बड़ी हमारी परीक्षा है, ये बाबा ने हमको हमारे लिए भेजा हुआ संपन्न बनाने के लिए, है ना। तो इससे हमको संघ की संभाल रखनी है। उसके बाद फिर नुमा शामी हो, क्योंकि सारे दिन में हम ठीक रखेंगे तो अमृत वेला हमारा पावरफुल होगा, अगर सारे दिन में एक भी कोई चीज मिस होगी तो अमृत वेले उस पर अटैक होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, तो नुमा शाम का युग मिस नहीं करने का। हाँ सेवा है तो अलग बात है, फिर भी अगर हमको आधा घंटा भी मिलता है, आधा घंटा ही बैठो वहां आगे संगठन में, आज्ञा का पालन जरूरी है, 7 से 7:30 तो लाजमी करना चाहिए, है ना। फिर नुमा शाम के योग के बाद क्या करेंगे, फिर शाम को एक अव्यक्त वाणी पढ़ लेनी या क्लास करने की, है ना, या इस क्लास में जो यहाँ डेली होती है, या तो फिर अलग से जो नहीं भी आ पाते हैं कारण अकारण कुछ भी रहा होगा, तो डेली एक अव्यक्त वाणी पढ़नी है, जैसे अगर घरों में रहते हैं तो अव्यक्त वाणी जरूर पढ़नी है, ना? जैसे हम जब से मधुबन आए हैं तो हम शुरू शुरू में जब आए ना, तो अब घर में जब रहते थे तो बहुत अच्छी अवस्था होती थी, यहाँ आए तो हमने देखो शाम का टाइम हमारा तो वेस्ट हो रहा है, तो एक महीना हम एक भाई के साथ नकेले घूमते जाते थे, तो हमको तो बड़ा दिल खाने लगा, हमने सोचा हम तो यहाँ से वापस चले जाते हैं, अभी घर में हमारी अवस्था अच्छी थी, यहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, भगवान के यज्ञ में आके हम टाइम वेस्ट करें तो बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा, हमारे ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। फिर हमने दोनों भाइयों ने शाम के टाइम मुरली पढ़ना शुरू किया, फिर 2-3 धीरे 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 करते करते अभी काफी मधुबन वाले बैठते हैं आपस में मुरली पढ़ते हैं, तो मुरली से क्या होता है, आत्मा में शक्ति आ जाती है, हमारे विचार जो पहले के मन को जो कलुषित करने वाले विचार हैं, एक निष्क्रिय करने वाले विचार हैं, वो खत्म हो जाते हैं एकदम, एक्टिव है आत्मा, अलर्ट हो जाती है, अटेंटिव हो जाती है, क्योंकि जिस कर्तव्य के लिए हम आए हैं वो अगर करें नहीं है, क्योंकि सेवा करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो संकल्पों की रचना है, वातावरण को बनाने की जो कला है, वो बराबर ने हम बच्चों को दी है, वो किसी के पास नहीं है, संकल्पों से वातावरण प्रभावित होगा, संकल्पों के आधार पर भी हमारे कर्मों के। तो डेली शाम को एक मुरली जरूर पढ़ने की, अगर घर में 2-4 लोग ज्ञान में चलते हो सभी आपस में संगठित रूप में करो, नहीं तो अकेले चलते हैं अकेले पढ़ो, जरूर पढ़ने की। और फिर उसके बाद आधा घंटा योग का नियम बाबा ने अमृत वेले की किताब में भी, जिस रात को सोने से पहले आधा घंटा योग जरूर करो, 20 मिनट करो, यहाँ भी अगर करते हैं तो हमने देखा क्लास करके 10 मिनट भले करते हैं लेकिन बाबा के इधर शांति स्तंभ में खड़े हो जाएंगे, नहीं तो बाबा के कमरे में जाएंगे, लेकिन जाना चाहिए 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के बाबा को अपने दिल का हालचाल सारा सुना दो, जो भी लेन देना है, चाहे अच्छा है चाहे खराब है कुछ भी है सारा सुना दो, और फिर उसके बाद गुड नाइट करके 10 से 10:30 तक सो जाने का, तो अमृत वेले का मजा आएगा। सारे दिन में थोड़ा थोड़ा बीच में अशरीरीपन का अभ्यास, अव्यक्त स्थिति का अभ्यास, अंतर्मुखी अवस्था, मनन शक्ति, एकांतवासी बनना, साक्षी दृष्टा, ये सब चीजें धीरे 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 हमारे जीवन में ऐड होती जाएंगी, फिर अमृत वेला स्वतः और सहज होने लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगी फिर, नहीं तो भारी पड़ जाता है, इतने सालों से चल रहे हैं अगर अब भी हमारा अमृत वेला शक्तिशाली नहीं है, फाउंडेशन है हमारे अमृत वेला क्या है, अमृत पान करने की वेला है, अमृत वेले भगवान स्वयं भोले भंडारे के रूप में आता है, वरदान देने के लिए आता है, वो खुले भंडारे हैं उसके, और हम उसके भंडारे के अंदर ही एंटर नहीं कर रहे हैं तो भरपूर कैसे होंगे, स्वयं को अमृत से भरने का टाइम है वो, लेकिन सारे दिन में भी अमृत डालना, अगर उसके अंदर विष पड़ गया तो वो विष भी अपना काम करेगा, उस पर भी अटेंशन रखने की जरूरत है। तो ये पथ को साधारण पथ नहीं है, जिस पथ पर हम चल रहे हैं बहुत बड़ी बात है, साधारण नहीं है कोई आत्मा भी, हर ब्राह्मण आत्मा अपने आप में यूनिक है, विशेष है। उस दिन बताया ना बाबा ने ड्रामा के बारे में, अगर कोई रॉन्ग को पार्ट बजा रहा है वो भी ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट बजा रहा है, कितने सीखने वाली बात बता दी बाबा ने। तो हर बात से सीखना है, तो आनंद में ही अमृत वेला होगा, आनंद आना चाहिए योग में, सुख आना चाहिए, मन हमारा बार बार ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्यों जाता है, अगर हम जिस काम के लिए बैठे हैं उसी काम के लिए हमारे मन बुद्धि संकल्प क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों जा रहे इधर उधर? क्योंकि हमने उसका महत्व नहीं समझा है। अमृत वेला तो हमको फुल चार्ज करने का वेला है, एकदम उमंग से भरने का वेला है, सारे दिन का आधार है, फाउंडेशन है वो। तो उसमें एक जागृति आनी चाहिए हमारे अंदर में, क्योंकि टाइम कौन सा चल रहा है, अभी अंत का भी अंत चल रहा है, कोई भरोसा तो है नहीं है। तो अमृत वेले की किताब लेनी, उसमें हर सिस्टमेटिकली बात लिखी है कैसे उसको करना है। साकार अमृत वेला भी है, अव्यक्त कौन कौन से सेट से अपने आप को श्रृंगारना है, गुणों के सेट, शक्तियों के सेट, हर कर्म के लिए बाबा ने उसमें शिक्षा दी हुई है, अनेक प्रकार की। तीन बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, ड्रामा बिंदी, कितने सुंदर सुंदर महावाक्य हैं उसमें। बार बार पढ़ेंगे 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 तो पढ़ते 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 ही हमारी स्थिति अपने आप ऊंची हो जाएगी। तो अमृत वेले, सबसे पहले अमृत वेला शक्तिशाली बनाने के लिए, एक तो मुरली क्लास में से कुछ तो महावाक्य हमको डेली रिवाइज करने हैं, मन ही मन। जैसे बाबा ने आज बोला, नोट से लेने की जरूरत नहीं है, मन बुद्धि में नोट कर लो सीधा, नहीं तो कोई बात नहीं, पांच सात नोट ले। बाबा ने बोला ना, गांठ बांध लेनी चाहिए आज की मुरली में, कोई दूसरी दूसरी बातें तो नहीं बांधी होती हमने। तुमको रोटी टुकड़ की कितनी जरूरत है? दो रोटी, दो रोटी नहीं है, रोटी टुकड़ ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसे हमको आनंद भाई अमृत वेला करना है, मुरली क्लास, कर्म क्षेत्र, संबंध संपर्क, संघ में आते हुए नुमा शाम का योग, फिर नुमा शाम एक मुरली पढ़ने की, फिर बाबा से रू रन करने की, बाबा को चार्ट देने का, फिर 10 से 10:30 के बीच में सो जाने का, फिर सवेरे 3:15-3:30 उठ के फिर बाबा गुड मॉर्निंग, और सीधा बाबा के कमरे आके बैठ देना, फिर चालू कर देना, फिर नए सिरे से चालू कर देना। ओम शांति।